हम सब दिन में कम से कम 2-3 बार तो खाना खाते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि हमारी थाली में जो भोजन है वो सिर्फ कैलोरी और प्रोटीन से कहीं ज्यादा हो सकता है।
बिल्कुल।
आज हमारे पास जो सामग्री है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार से मिली है और ये एक बहुत ही प्राचीन भारतीय परंपरा बलि वैश्व महायज्ञ के बारे में है। ये परंपरा भोजन जैसी रोज की क्रिया को एक गहरे मतलब एक आध्यात्मिक अनुभव में कैसे बदला जाए ये बताती है। तो आज हम इसके कर्मकांड में नहीं बल्कि इसके पीछे जो असल आइडिया है उसमें गोता लगाएंगे।
ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है क्योंकि ये सीधे उस चीज को छूती है जो हम रोज करते हैं लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं।
हाँ,
स्रोत का जो मूल विचार है वो यही है कि भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं है, वो हमारे मन और हमारी चेतना का भी निर्माण करता है।
अच्छा,
इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो बुद्धि से हो, नौकरी से, व्यापार से, उसे सबसे पहले परमात्मा को समर्पित करो। और ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक मानसिकता बदलने की प्रक्रिया है, मैं से हम की ओर।
अच्छा, तो ये देने की भावना से शुरू होता है, लेकिन श्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत बहुत आकर्षक लगी
जी
कि बलि वैश्व भगवान का प्रत्यक्ष प्रसाद है और वो आपके हाथ का भोजन करने में समर्थ हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब बहुत गहरा है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ अर्पित करते हैं तो ईश्वर उसे सूक्ष्म रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। श्रोत कहता है कि परमात्मा तब प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे।
हाँ, बल्कि समाज के पिछड़े लोगों, दूसरे प्राणियों, पक्षियों और यहाँ तक कि पेड़ों के लिए भी सोचता है। ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों का रोजाना नवीनीकरण है।
और यहीं पर वो मशहूर कहावत आती है,
जी,
जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन।
जी,
हम इसे अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन श्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसका कोई गहरा वैज्ञानिक आधार भी है?
श्रोत के अनुसार इसका बहुत गहरा आधार है। वो अन्न को दो हिस्सों में देखता है,
जी
एक स्थूल
जी
और एक सूक्ष्म।
स्थूल और सूक्ष्म।
हाँ, स्थूल हिस्सा यानी फिजिकल न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारे शरीर का रस, रक्त, मांस, हड्डियाँ ये सब बनता है। ये कह सकते हैं कि शरीर का हार्डवेयर है।
ठीक है, हार्डवेयर।
लेकिन जो सूक्ष्म हिस्सा है वो है उस भोजन का सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए।
बिल्कुल। अन्न का सॉफ्टवेयर है उसे कमाने वाले की नियत,
हाँ।
पकाने वाले की भावना और खाने वाले का भाव।
अच्छा,
श्रोत कहता है कि पाप की कमाई से शरीर शायद पल भी जाए लेकिन मन और आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा गया, जैसा आहार वैसा विचार। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बहुत पौष्टिक भोजन भी गुस्से में या चोरी के पैसे से खा रहा है तो वो भोजन शरीर को शायद फायदा दे दे पर मन में अशांति ही पैदा करेगा।
सही बात है।
ये विचार आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है, जहां हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं। श्रोत इसे आध्यात्मिक नजरिए से देख रहा है लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो वही है
कि भोजन के प्रति हमारा रवैया हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है।
बिल्कुल
ठीक है। तो ये सिर्फ इस पर नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि कैसे कमाते हैं, कैसे पकाते हैं और कैसे खाते हैं, इन सब पर निर्भर करता है। तो अगर ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है तो इसे करने का तरीका क्या है? क्या ये बहुत जटिल है?
बिल्कुल नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। विधि को जानबूझकर इतना सरल रखा गया है कि इसे कोई भी किसी भी घर में अपना सके।
अच्छा,
बस 3 आसान चरण हैं। पहला, भोजन पकाने से पहले चूल्हे या गैस स्टोव को साफ करें और पवित्र भावना से खाना पकाएं।
ठीक है।
दूसरा, जब भोजन पक जाए तो उसमें नमक मिर्च मिलाने से पहले एक साफ प्लेट में थोड़ा सा निकाल लें।
हाँ।
और तीसरा, उस निकाले हुए भोजन में थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर उसकी बेर के आकार की 5 छोटी छोटी गोलियां बना लें।
और इन्हें अर्पित कैसे करना है? मतलब आजकल ज्यादातर घरों में गैस स्टोव होता है, मिट्टी का चूल्हा तो होता नहीं।
उसके लिए भी बहुत व्यवहारिक समाधान दिए गए हैं। अगर मिट्टी का चूल्हा है तो कुछ अंगारे एक मिट्टी के बर्तन में रख लें।
ठीक।
और अगर गैस स्टोव है तो एक छोटी लोहे की जाली रखकर या फिर सब्जी चलाने वाले किसी धातु के चम्मच में रखकर भी आहुतियां दी जा सकती हैं।
अच्छा, मतलब सुविधा को प्राथमिकता दी गई है।
हाँ, स्रोत में एक खास तरह के छोटे हवन पात्र का भी जिक्र है जिसे गैस पर रखकर आहुति दे सकते हैं। मतलब सुविधा को प्राथमिकता है, कर्म काउंड को नहीं।
ठीक है, तो विधि तो काफी सरल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असली सार इन 5 आहुतियों के पीछे के दर्शन में छिपा है। ये सिर्फ 5 गोलियां नहीं हैं, ये 5 जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं, है ना?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली खेल इन्हीं 5 आहुतियों के अर्थ में है। और दिलचस्प बात यह है कि 5ों आहुतियों के लिए मूल मंत्र गायत्री मंत्री है, बस हर बार समर्पण बदल जाता है।
समर्पण बदल जाता है,
हाँ। ये एक तरह से कृतज्ञता का दायरा बढ़ाने जैसा है, जो खुद से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है।
तो चलिए इस दायरे को समझते हैं। पहली आहुति किसके लिए है और उसका क्या मतलब है?
पहली आहुति ब्रह्म यज्ञ कहलाती है। मंत्र के अंत में कहा जाता है, इदम् ब्रह्मणे इदम् न मम, यानी यह ब्रह्म के लिए है, यह मेरा नहीं है। यह उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें ये जीवन दिया, ये शरीर और ये चेतना दी। एक तरह से अपनी पहचान को उस बड़ी शक्ति से जोड़ना है।
और दूसरी आहुति, स्रोत में देव यज्ञ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक मिनट, यहाँ देवता से क्या मतलब है? क्या ये पौराणिक देवी देवताओं की बात हो रही है या इसका कोई और मतलब है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के नजरिए से देवता का अर्थ है वो दिव्य शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं।
जैसे कि?
जैसे सूर्य जो ऊर्जा देता है, वायु जो प्राण देती है, जल जो जीवन देता है। देवयज्ञ इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आभार है। ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से केवल लेते ही न रहें, बल्कि उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करें।
ये तो बहुत सुंदर विचार है, मतलब रोजाना प्रकृति का धन्यवाद करने जैसा है।
बिल्कुल।
तीसरी आहुति है ऋषि यज्ञ, ये किसके लिए है?
यह उन ऋषियों और ज्ञानियों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने हमें, मतलब जिन्होंने हमें ये ज्ञान की विरासत दी है।
वेद, शास्त्र, विज्ञान, ये सब।
आज जो भी ज्ञान आज हमारे पास है वो हजारों सालों की मेहनत का नतीजा है। ऋषि यज्ञ हमें उस ज्ञान परंपरा का सम्मान करना सिखाता है, और ये एक संकल्प भी है कि हम भी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे।
तो ये एक तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल डेट्स यानी बौद्धिक ऋण को चुकाने का प्रयास है।
सही कहा,
ये बहुत गहरा है। अब चौथी आहुति निर्याज्ञ, जो मनुष्यों के लिए है, ये थोड़ा अलग लगता है। तो क्या श्रोत ये कह रहा है कि अतिथि सत्कार या दान पुण्य करना भी एक तरह का यज्ञ है?
बिल्कुल, निर्यज्ञ का मतलब ही है मनुष्य की सेवा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के प्रति है।
हाँ,
किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, सबसे साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना, ये सब निर्यज्ञ का ही हिस्सा है। ये हमारे अंदर की सामाजिक जिम्मेदारी को जगाता है।
और फिर आती है 5वीं और आखिरी आहुति, भूत यज्ञ। ये तो कमाल है, मतलब श्रोत हजारों साल पहले ही एक तरह से इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, जिसे आज हम एक बहुत आधुनिक विचार मानते हैं।
आपने एकदम सही समझा, भूत यज्ञ का दायरा सबसे बड़ा है। ये सभी प्राणियों के लिए है, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, हर जीव।
वाह,
ये इस विचार पर आधारित है जिसे आत्मवत सर्वभूतेषु कहते हैं, यानी सभी प्राणियों में स्वयं को देखना। ये सिखाता है कि इस धरती पर जितना हक हमारा है उतना ही हर जीव का है।
जैसे गाय को रोटी देना या चिड़ियों को दाना डालना।
हाँ, ये सब इसी यज्ञ का व्यावहारिक रूप है। ये हमें सिखाता है कि हम इस इकोसिस्टम के मालिक नहीं हैं, बल्कि एक हिस्सेदार हैं।
तो अगर मैं इन 5ों को जोड़कर देखूं, तो ये एक छोटी सी दैनिक क्रिया के जरिए व्यक्ति को खुद से, प्रकृति से, ज्ञान से, समाज से और सभी जीवों से सबसे जोड़ रही है। या तो एक तरह का होलिस्टिक लिविंग का फॉर्मूला लगता है।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है संस्कारों पर। श्रुत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है।
क्या?
कि इन 5 आहुतियों के बाद जो भोजन बचता है उसे यज्ञाविशिष्ट यानी यज्ञ का अवशेष कहा जाता है। मान्यता है कि इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त होता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर ये है कि जब आप रोजाना देने का अभ्यास करते हैं तो आपकी सोच स्वार्थी नहीं रहती। आप अपनी संपत्ति, बुद्धि और समय को दूसरों की भलाई में लगाने के लिए प्रेरित होते हैं।
और जाहिर है इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता होगा।
निश्चित रूप से, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहाँ खाना बनाने से पहले 2 मिनट इस प्रक्रिया में लगाए जाते हैं। भोजन के प्रति एक सम्मान का भाव है, एक कृतज्ञता है।
हाँ, माहौल ही बदल जाएगा।
उस घर के माहौल में वहाँ के बच्चों के संस्कारों में कितना फर्क पड़ेगा, इसकी तुलना उस घर से कीजिए जहाँ हर कोई अपने अपने कमरे में बैठकर फोन पर नजरें गड़ाए स्विगी या जोमैटो से मंगवाया हुआ खाना खा रहा है।
ये बहुत शक्तिशाली तुलना है।
दोनों स्थितियों में पेट तो भर जाएगा, लेकिन एक में संस्कार मिल रहे हैं और दूसरे में सिर्फ कैलोरी।
सही बात है। तो अंत में स्रोत का निष्कर्ष क्या है, इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है?
अंतिम लक्ष्य है सद्बुद्धि की स्थापना। स्रोत कहता है कि जब मनुष्य ईमानदारी से कमाया गया और इन 5 यज्ञों से संस्कारित अन्न खाता है तो उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है।
अच्छा।
वो सही और गलत का भेद कर पाता है, और जब व्यक्ति की बुद्धि सही होती है तो परिवार में शांति आती है, जब परिवार में शांति होती है तो समाज में शांति आती है।
तो ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली माध्यम है।
हाँ, जो हमारी दैनिक जीवन की सबसे सामान्य क्रिया यानी भोजन करने को एक असाधारण आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देता है। ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक तरीका है जो आपकी रसोई से शुरू होता है।
तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बलि वैश्वा मायज्ञ भोजन को केवल पेट भरने की एक जैविक जरूरत से ऊपर उठाकर उसे चेतना को विकसित करने का एक साधन बनाता है।
बिल्कुल।
ये उदारता, कृतज्ञता और इस सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का एक दैनिक अभ्यास है जो हमारे भोजन की थाली से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक फैलता है।
यहाँ पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इंस्टेंट और फास्ट पर इतना जोर है, वहाँ भोजन पकाने और खाने की प्रक्रिया को धीमा करके उसमें कृतज्ञता और समर्पण का भाव जोड़ने का विचार हमें कहाँ ले जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर यह हमारी आधुनिक मानसिक और सामाजिक समस्याओं का एक अनपेक्षित समाधान हो सकता है?